अध्याय सांकल की आवाज, जब डर की आगे हिम्मत जागे। स्थान रैना का घर। समय रात 8:47। दीवारों की दरारों में जैसे सन्नाटा रिस रहा था। बिजली की हल्की सी झपक और पूरे कमरे में एक क्षणिक अंधेरा। रैना अभी तक वहीं थी, दरवाजे के पास जमीन पर बैठी। उसकी हथेलियों पर अभी भी उसके नाखूनों के निशान उभरे थे। घबराहट की पकड़ में खुद को भी कस लिया था, लेकिन उसकी आंखें अब थकी हुई नहीं थीं। उनमें एक अजीब सा तनाव था, जैसे भीतर कुछ उबल रहा हो। ट्र, एक और दस्तक। इस बार न धड़ाधड़ न जोर की मार, बस एक ठंडी खामोश दस्तक। रैना उठी, धीरे धीरे दरवाजे तक चली। पीप होल से देखा, वही चेहरा, अखिलेश राजवंशी। लेकिन इस बार वो अकेला था। उसने दरवाजा खोला नहीं, बस आवाज दी। अब क्या बचा है कहने को? अखिल की आवाज, वो जो अब तक तूने छिपाया है। रैना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कितनी बार कहूं मैंने कुछ नहीं किया। अखिल ने गहरी सांस ली और अपनी जेब से कुछ तस्वीरें निकाली, दरवाजे की दरार से भीतर सरकाई। ये देख, ये सारी तस्वीरें, वीडियो क्लिप्स न्यूज चैनलों पर घूम रही हैं। तेरे एक हाव भाव ने मेरी पूरी छवि मिट्टी में मिला दी। तूने कुछ नहीं किया तो फिर ये सब क्या है? रैना तस्वीरें देखती है, एक कैमरे की झिलमिल रोशनी में कैद उसके डरे चेहरे की तस्वीरें, उसकी खामोशी, अखिल के पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स और मीडिया का वो झूठा विमर्श जो बना दिया गया था। वो अब चुप नहीं रह सकती थी। मेरे डर को तुम ही ने जन्म दिया था अखिल, उस रात तुम ही ने मुझे घेरा था। तुम्हारे सवाल, तुम्हारी आंखें, सब जैसे मुझे चीर डालने को तैयार थे। अखिल ने दरवाजा हल्के से धक्का देकर खोलने की कोशिश की। मैं जानना चाहता हूं सच्चाई, और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, रैना चिल्लाई। पीछे हटो, मत बढ़ो। उसकी आवाज थरथरा गई थी, लेकिन इस बार उसमें एक चिंगारी थी। अगर एक और कदम मेरी तरफ बढ़ाया तो पुलिस को बुला लूंगी। क्या समझ रखा है खुद को? तुम कोई भगवान नहीं हो, बस एक आदमी हो जो ताकत के नशे में चूर है। अखिल थोड़ा चौंका, अब तक उसने रैना को इस तेवर में कभी नहीं देखा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जब जानती हूं मैं अकेली हूं घर में, फिर भी इस वक्त आए? दरवाजा पीटा, डराया, धमकाया, क्या यही है तुम्हारा सच? अखिल गंभीर होकर, मैं डराने नहीं आया, सच्चाई खींचने आया हूं। जिस दिन तूने चुप रहकर सबके सामने मुझे गिराया, उस दिन तूने ये हक खो दिया कि अब तेरे सामने नरमी रखूं। तो अब क्या करोगे, रैना चीखी। बदला लोगे, धमकाओगे? तो सुन लो, तुम्हारी इस चुप्पी के तले अब मेरा डर मर चुका है। अब जो सामने है वो सिर्फ मैं हूं, एक लड़की जो टूट तो गई थी पर खत्म नहीं हुई। कमरे की हवा थम गई। अखिल का चेहरा तना हुआ था, गुस्से, हताशा और असमंजस में उलझा हुआ। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने कॉल उठाया और सुनते ही चेहरा और ज्यादा सख्त हो गया। हाँ, दूसरी तरफ से आवाज आती है, कोई बिजनेस सहयोगी या मीडिया मैनेजर। हाँ, मैं समझता हूं। नहीं, फिलहाल कोई कमेंट नहीं। एक लंबा पॉज। ठीक है, मैं खुद सब संभाल लूंगा। फोन काटकर उसने रैना की तरफ देखा। अब उसकी आंखों में लपट नहीं थी, पर हारा हुआ घमंड था। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, अगर तूने नहीं बताया कि उस रात असल में क्या हुआ था, तो मैं वो कर दूंगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। तेरे पास जो कुछ भी है, तेरी इज्जत, तेरा नाम, तेरा कॉलेज, तेरा छोटा सा करियर, मैं सबकी हवा निकाल दूंगा। रैना खड़ी रही, इस बार ना डरी ना कांपी, बस एक बात बोली, तुम जो कर सकते हो वो कर लो मिस्टर, पर एक बात मैं भी कह रही हूं, अगर तुम दोबारा मेरे दरवाजे पर बिना इजाजत आए या एक और बार मुझे इस तरह डराने की कोशिश की, तो मैं पुलिस में सिर्फ शिकायत नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हारा हर झूठ बाहर लाऊंगी। तब देखना कौन शर्मिंदा होता है, मैं या तुम। अखिल कुछ कहने ही वाला था, लेकिन रैना की आंखों में जो स्थिरता थी, उसने उसकी जुबान बांध दी। अखिल ने मुड़ते हुए एक सख्त आवाज में कहा, 24 घंटे का वक्त दे रहा हूं, अगर तब तक सच्चाई बाहर नहीं आई तो जो बचेगा वो सिर्फ नाम, रिश्ते और इज्जत की राख होगी। वो बाहर निकल गया, जब भीतर की चुप्पी क्रांति बन जाए। दरवाजा फिर से बंद हुआ। रैना ने उसे दो लॉक से बंद किया, फिर सांकल चढ़ाई और दीवार से टिक गई। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में एक नया रंग था, डर का नहीं, तैयारी का। कंधे पर पड़ी चुन्नी को उसने ठीक से लपेटा। उसके कानों में अभी भी अखिल की धमकी गूंज रही थी, पर उस गूंज के भीतर एक नई आवाज थी, खुद की। अब बहुत हो गया। वो पलटी और कमरे में रखी पुरानी डायरी उठाई। धीरे धीरे उसके पन्ने पलटे और फिर एक जगह आकर थम गए, जहां कुछ नाम, तारीखें और कुछ छोटी बातें लिखी थीं। उसने देखा और बहुत धीमे से फुसफुसाई। अब सच्चाई बोलनी पड़ेगी, क्योंकि चुप्पी अब खुद पर भारी पड़ने लगी है। एक उम्मीद, जब सादगी राजवंश की देहरी पर खड़ी हो। सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। राजवंशी हवेली के आंगन में हल्की सी धूप उतर आई थी, जो संगमरमर की फर्श पर मोती जैसी चमक रही थी। रात की उथल पुथल के बाद हवेली कुछ शांत थी, लेकिन वो शांति असली नहीं थी, जैसे किसी आंधी से पहले की चुप्पी। माहौल में खामोशी घुली थी, मगर तभी मुख्य दरवाजे की तरफ से एक सधी हुई आहट सुनाई दी। एक लड़की गहरे गुलाबी रंग की सिल्क की सूट सलवार पहने हुए, बालों को करीने से खुले छोड़े हुए, हाथों में हल्के चूड़ियों की खनक, धीरे धीरे भीतर आई। उसके पीछे नौकर उसके साथ लाया गया छोटा सा सामान और गिफ्ट्स लिए चल रहे थे। लड़की की चाल में संयम था, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में गहराई। वो थी शालिनी वर्मा, अखिलेश राजवंशी की मंगेतर। 4 महीने पहले ही दोनों की सगाई हुई थी, एक सादगी से भरे लेकिन बेहद भावनात्मक समारोह में। शालिनी मुंबई के एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन की बेटी थी और खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। खूबसूरती में उतनी ही सौम्य जितनी तेज तर्रार दिमाग में। अखिल के साथ उसका रिश्ता पारंपरिक होते हुए भी बहुत आधुनिक सोच पर टिका था, बराबरी, भरोसा और अपनापन। रामलाल काका, दादी जी कहाँ हैं? उसने मुस्कुराकर पूछा। अंदर कमरे में है बिटिया, सुबह से कोई बोले नहीं रहा, सब थोड़े परेशान से हैं, रामलाल काका ने धीरे से जवाब दिया। फिर पूछा, आपने कुछ खाया है बिटिया? नहीं काका, पहले सबको मिल लूं फिर चाय पीऊंगी, वैसे अगर इलायची वाली चाय मिल जाए तो मजा आ जाएगा, उसने मुस्कुराकर कहा। हॉल की ओर बढ़ते हुए शालिनी ने देखा, चारों ओर सन्नाटा था। वो चुपचाप सबके लिए लाई गई गिफ्ट बैग्स एक मेज पर रखवा चुकी थी, सबके नाम की सुंदर लेबलिंग के साथ। दादी जी के लिए एक कश्मीरी शॉल, दादाजी के लिए क्लासिक वॉच, यशवर्धन अंकल के लिए एक पुरानी पेंटिंग की रेप्लिका जो उन्हें पसंद थी, और अर्जुन राघव भाइयों के लिए वेलनेस किट्स, बाकी घर में सबके लिए कुछ ना कुछ। ये सब आप लाई हैं? पीछे से आवाज आई। शालिनी ने मुड़कर देखा, अर्जुन खड़ा था, थका सा लेकिन आंखों में सवाल। हाँ भैया, मैं कल रात ही आने वाली थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई तो आज सुबह की फ्लाइट पकड़ ली, और ये सब मैंने सोचा इस स्पेशल डे पर कुछ यादगार हो, मगर वो रुक गई। मगर आज का दिन वैसा नहीं रहा, अर्जुन ने अधूरी बात पूरी की। शालिनी ने हल्के से सिर हिलाया। अर्जुन ने शालिनी को ऊपर से नीचे तक देखा, महंगे कपड़े पर कोई बनावटी ठाट नहीं, चेहरे पर शालीनता और बात करने में सहज आत्मविश्वास। वो वही लड़की थी जिसे देखकर अखिल ने एक बार कहा था, इसके साथ जिंदगी सुकून में बहेगी, तूफानों में भी। चाय मंगवाऊं? अर्जुन ने अचानक कहा। नहीं भैया, शालिनी मुस्कुराई, मैं खुद किचन में बना लूंगी काका के साथ, वैसे भी मुझे यहाँ की रसोई बहुत अच्छी लगती है, बसंती काकी की बनाई इमली की चटनी तो भूली नहीं हूं। अर्जुन का चेहरा कुछ हल्का हुआ। दादी से मिल लूं? उसने पूछा। मिल लो, लेकिन हो सके तो ज्यादा सवाल मत करना, शालिनी ने धीमे से सिर हिलाया। दादी के कमरे की ओर बढ़ते हुए उसके कदम अब थोड़ा धीमे थे। दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। दादी जी बिस्तर पर बैठी थी, आंखों में वीरानगी और हाथों में अखिल का बचपन का एक फोटो।
दादी, शालिनी ने धीरे से आवाज दी। दादी ने सिर उठाया और हल्के से मुस्कुराई। आ गई तू? हाँ दादी, सब कैसे हैं? उसने धीरे से आकर उनके पास बैठते हुए पूछा। तू देख ही रही है, हवेली जो रौनक थी वो जैसे किसी ने खींच ली हो। शालिनी ने उनका हाथ थामा। अखिल कहाँ है? अपने कमरे में, चुपचाप। कुछ कहा उसने? बस यही कि वो बेगुनाह है। पर बिटिया, आजकल लोग तो कैमरे से सच नहीं, मसाला ढूंढते हैं। शालिनी ने थोड़ी देर कुछ नहीं कहा, फिर बोली, दादी, कभी कभी सच की शक्ल भी सवाल जैसी लगती है, पर मैं जानती हूँ अखिल जैसा लड़का ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, ना आपके संस्कार ना उसके स्वाभिमान में ऐसी चीज की गुंजाइश है। दादी की आंखें भर आईं। तू अखिल से मिल ले, शायद तुझसे कुछ कह पाए। उसी वक्त नीचे किचन में रामलाल और बसंती चाय बना रहे थे। बहुत भली बिटिया है ये शालिनी, बसंती बड़बड़ा रही थी, ना कोई नखरा ना बनावटी बात, और देख रामलाल सबके लिए तोहफे लाई हैं, जबकि खुद के ऊपर आफत आई है। रामलाल बोला, आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं, आंखों में नम्रता और चाल में इज्जत। चाय इलायची वाली बना रही हूँ जैसे इन्हें पसंद है। अच्छा कर रही है, आज इस हवेली में कोई तो है जो अपना सलीका नहीं भूली। उधर शालिनी अब धीरे धीरे अखिल के कमरे की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी वही ठहराव था, न शक न डर, बस एक उम्मीद कि वो जिसे जानती है उसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। दरवाजे के पास पहुंचते हुए उसने बस हल्के से दस्तक दी।